हरे कृष्णा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका जन्म दिवस है, आविर्भाव दिवस। इसलिए आज हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि वैष्णवों के बारे में और खास करके महान आचार्यों के बारे में जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे चित्त का शुद्धिकरण तो होता ही है, साथ साथ में उन महान आचार्यों का गुणगान जब होता है तो हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जो हम पढ़ते हैं गीता और भागवत में, किस तरह से उसको अपने जीवन में उतारा जाए, कैसे इन महान भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाया, कैसे भक्ति के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा और कैसे उन्होंने प्रचार किया, इनसे हमें प्रेरणा मिल सकती है, मार्गदर्शन मिल सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी, इनकी कथा आज हम संक्षेप में सुनेंगे। वैसे इनके पिताजी, जिनका नाम था केदारनाथ दत्त, वो ब्रिटिश सरकार के समय डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे उस समय, और बाद में चलकर उनका नाम हुआ भक्ति विनोद ठाकुर। वो भी हमारे संप्रदाय में बहुत महान आचार्य रहे हैं, और उन्होंने ये दिखाया कि एक आदर्श गृहस्थ को कैसे होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर हालांकि एक मैजिस्ट्रेट थे, इतने ऊंचे पद में थे, हमेशा अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे, इतने जिम्मेदारी की काम के काम उनके पास सौंपे गए थे सरकार द्वारा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भक्ति में कोई कम समय नहीं दिया, और उनका कुटुंब जो था कोई साधारण कुटुंब नहीं था, उनके 13 बच्चे थे। 13 बच्चों के साथ में उन्होंने अपना सब कुछ संभालते हुए बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा को उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया, और इन किताबों को सब जगह उन्होंने फैलाया, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर की तीव्र इच्छा थी कि यह भक्ति या वैष्णव सिद्धांत बड़े सरल ढंग से सारे समाज में प्रचार किया जाए। अपने घर को भी उन्होंने गोलोक वृंदावन बनाया। वो कहते थे कि जब मैं अदालत से, कोर्ट से लौट कर आता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं घर में आ रहा हूं, मुझे ये लगता है कि मैं गोलोक वृंदावन में आ रहा हूं, क्योंकि मेरे परिवार के सारे सदस्य भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। तो हरे कृष्ण। तो ऐसे परिवार में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। वैसे उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी पद्म पुराण में की गई है, जहां की बताया है कि कलयुग में पुरुषोत्तम क्षेत्र में, अर्थात ओडिशा, जो प्रांत आज के समय ओडिशा से नाम के जाना जाता है, वहां पर एक महान व्यक्ति का जन्म होगा जो जगह जगह जाकर जगन्नाथ जी के गुणगान फैलाएगा, सारे विश्व भर में फैलाएगा, और इस भविष्यवाणी को पूरे करते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ जगन्नाथपुरी में 1894 में। वैसे उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त, उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरा कोई ऐसा संतान हो, ऐसा पुत्र हो जो ऐसा वैष्णव बने कि जगह जगह जाकर सब जगह वैष्णव धर्म की स्थापना करे, प्रचार करे, और जो सब गलत धारणाएं हैं, गलत दर्शन हैं, उनको उनका खंडन करे, जैसे कि मायावाद दर्शन। मायावाद दर्शन मतलब वो दर्शन जिसमें कहा जाता है कि भगवान निराकार है और भगवान में लीन होना हमारे जीवन का उद्देश्य है, और हम भी भगवान हैं और आप भी भगवान हैं। ऐसे मायावाद दर्शन काफी प्रचलित था उस समय। कृष्णा और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने जब ये वैष्णव धर्म का स्पष्टीकरण किया 500 साल पूर्व, उनके बाद में कई ऐसे महान आचार्य आए जैसे कि षड गोस्वामी। और उनके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य, आगे चल के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण। लेकिन बलदेव विद्याभूषण और उनके शिष्य उद्धव दास ब्रह्मचारी के बाद में ऐसे कोई महान आचार्य हुए नहीं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव धर्म का अच्छी तरह से प्रचार किया और उसका पालन किया। इसलिए वैष्णवों का समाज जो है उनका बहुत पतन हो गया, और जो शुद्ध वैष्णव सिद्धांत थे उनको तोड़ मरोड़ करके कई नए नए अपसंप्रदाय बन गए। अपसंप्रदाय मतलब वो ऐसे दल जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध शिक्षाओं को तोड़ मोड़ के बदल के कुछ और ही बना दिया था, जैसे आउल, बाउल, सहजीय इत्यादि। ऐसे बहुत सारे दल बन गए थे जो अपने मनगढ़ंत ढंग से भक्ति करते थे। शास्त्रों में बताया है कि भक्ति करना है तो अपने मनगढ़ंत ढंग से नहीं कर सकते हैं, हमारी भक्ति भी शास्त्रों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र का विधि बिना हरिर भक्ताय एकांत के हरिर भक्तिर उत्पाताय एव कल्पते, कि जब हमारी भक्ति स्मृति श्रुति पंचरात्र शास्त्रों के ऊपर निर्धारित नहीं होती है, ऐसी एकांत का हरिर भक्ति तथा कथित हरिर भक्ति उत्पाताय एव कल्पते, केवल समाज में उसका उत्पात होता है। तो उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर के समय और कई साल पहले तक ये अपसंप्रदायों ने बहुत हलचल मचा दिया था धर्म के क्षेत्र में। मायावाद लोग थे और ये अपसंप्रदाय के लोग थे जिन्होंने वैष्णव सिद्धांत को बिल्कुल गलत ढंग से उसका आचार और प्रचार किया था। तो लोग जब वैष्णव ये शब्द सुनते थे तो उनके मन में एक ऐसा चित्र आता था, जो व्यक्ति केवल कोई अनैतिक कार्य करता है, भगवान के नाम में गलत कार्य करता है, इस प्रकार से वैष्णव बिल्कुल बदनाम हो गए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि ऐसे कोई महान प्रचारक आए उनके पुत्र के रूप में, जो सब जगह वैष्णव सिद्धांत को, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, इन सिद्धांतों को सब जगह स्थापित करे और बड़े अच्छे ढंग से, जोर से, जबरदस्ती, जबरदस्त तरीके से उनको, जो अपसंप्रदाय के लोग हैं उनके दर्शन का खंडन करें। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनको एक ऐसा पुत्र हुआ। जब बच्चा केवल 3-4 महीने का था तो उस समय जगन्नाथ जी का रथ चल रहा था। अभी आप जानते हैं कि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, अब जगन्नाथ रथ यात्रा केवल 3 दिन 3 महीने में होने वाली है जगन्नाथपुरी में। तो जब 3 महीने का बालक जब रथ यात्रा को दिखलाने के लिए उसकी माता भगवती देवी ने बाहर लाया, रथ वहां पर खड़ी थी। वास्तव में 3 दिन लगातार जगन्नाथ जी के रथ वहां पर खड़ी थी। 3रे दिन भगवती देवी ने बच्चे को बाहर लाया, जगन्नाथ जी का दर्शन कराया उसको, और वहां पुजारियों ने देखा और उस बच्चे को रथ के ऊपर लिया और जगन्नाथ जी के चरणों का स्पर्श कराया। उस बच्चे ने अपना हाथ बाहर करके जगन्नाथ जी के चरणों का स्पर्श किया और ठीक उसी समय जगन्नाथ जी के ऊपर जो हार पहनाया हुआ था वो गिर के सीधा उस बच्चे के गले में आके गिर पड़ा। तो इससे भक्ति विनोद ठाकुर को ये इशारा मिल गया कि ये भगवान की प्रार्थना मेरी सुन ली है और ये भगवान ने मुझे भेजा है, ये कोई विशेष बच्चा होने वाला है, कोई साधारण बच्चा नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत खुश होकर माता भगवती देवी ने बच्चे को अंदर वापस लाया। फिर जो नामकरण संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, अन्नप्राशन मतलब जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है बच्चे को, और जगन्नाथपुरी में प्रथा है कि जो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद होता है वो सबसे पहले विमला देवी को चढ़ाया जाता है, विमला देवी की मूर्ति है। तो विमला देवी का ग्रहण किया हुआ जो भोजन इनको खिलाया गया, इसलिए बच्चे का नाम रखा गया विमला प्रसाद। और विमला प्रसाद का जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो उस समय उनके सामने सोना और श्रीमद् भागवत ये दोनों रखे गए। आजकल भी ये प्रथा है, कई घरों में ऐसे किया जाता है। और फिर जो माता पिता होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो भी वहां उस संस्कार में उपस्थित होते हैं, बड़े आतुरता से देखते हैं कि बच्चे के सामने कई चीजें रखी जाती हैं, कहीं सोना चांदी पैसा कोई और चीजें और फिर भागवत इत्यादि। तो देखते हैं कि बच्चे का हाथ कहां पे जाएगा। अगर सोने के ऊपर जाएगा तो लोग सोचते हैं कि ये सोने के पीछे भागेगा या तो फिर उसको बहुत सोना मिलेगा, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। और अगर उसका हाथ भागवत के ऊपर गीता के ऊपर गया तो लोग सोचते हैं कि हाँ इसको भागवत में रुचि होगी आगे चल के। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अर्थात विमला प्रसाद ने भागवत का स्पर्श किया। कई बार इस्कॉन के भक्त भी गृहस्थ भक्त अपने बच्चों के साथ में ये संस्कार करते हैं तो कभी कभी बच्चे खेलते खेलते सोने को पैसे को छीन लेते तो वो बड़े निराश हो जाते, अरे रे 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 क्या हो गया। लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है, बच्चे ऐसे करें भी, ये केवल एक क्रिया है जो करते हैं, एक उत्सव है। तो खैर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने श्रीमद् भागवत को छुआ और इस प्रकार से सभी लोग बहुत खुश हो गए। जब विमला प्रसाद केवल 5 साल के थे तो इनके पिता केदारनाथ दत्त अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर ने कई आम खरीद कर लाए थे बाजार से और वो आम वहां पर घर में रखे हुए थे। तो 5 साल के बालक विमला प्रसाद ने देखा कि अरे आम है, तुरंत खा लिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा कि अरे तुमने भगवान श्री कृष्ण को भोग नहीं चढ़ाया, ऐसे ही तुमने भोग को ग्रहण कर लिया, ये तो तुमने बहुत अच्छा नहीं किया, पाप हो गया तुमसे। तो ये बात बालक विमला प्रसाद के हृदय में इतनी चुभी कि उस नन्हे से अवस्था में उन्होंने व्रत लिया कि मैंने मेरे जिह्वा के लालसा के लिए ये बड़ा पाप किया है, भगवान को भोग चढ़ाए बिना मैंने कुछ खाया है, तो मैं व्रत लेता हूं कि जीवन भर मैं आम नहीं खाऊंगा। और जीवन भर वास्तव में उन्होंने इस व्रत को बनाए रखा। देखिए केवल 5 साल का बालक, बड़े लोग भी ऐसे व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस 5 साल के बालक ने व्रत रखा, सारे जीवन भर उसका पालन किया। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये, भगवान को भोग चढ़ाए बिना हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो पाप होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पाप ये पचंत्यात्म कारणात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने भोग के लिए भोजन ग्रहण करता है, मुझे अर्पण नहीं करता, वो केवल पाप खाता है। लेकिन जो व्यक्ति मुझे भोग चढ़ाकर खाता है, उसके हृदय का जीवन का शुद्धिकरण होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे घर में भी हम चाहे जो भी खा रहे हो, हाँ, लेकिन मांसाहार इत्यादि नहीं करना चाहिए, वर्जित चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन जो भी चीजें हैं जिनको हमें खाने के लिए अनुमति है, शुद्ध शाकाहारी भोजन बिना प्याज और लहसुन के, हम जो भी हम खाते हैं हमें भगवान को भोग चढ़ाकर ही खाना चाहिए। कभी कभी घर में ऐसी चीजें रखे जाते हैं, हो सकता है हम उठाकर खा लेते हैं, बाजार से खरीदते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बाजार की चीजें हम ज्यादा नहीं खरीदें और खाएं, घर में बनाए हुए चीजें खाएं, भगवान को भोग चढ़ाकर खाएं, क्योंकि आहार ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, अगर शुद्ध आहार हो तो हमारा सारा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है, हमारी स्मृति शक्ति शुद्ध हो जाती है, क्योंकि ऐसे कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। कई संस्थाएं ऐसे हैं जो कहते हैं कि खाने में से क्या मतलब, हम मांसाहार करेंगे, अभक्ष भक्षण करेंगे, लेकिन हमारे मन में हम भगवान का चिंतन करेंगे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो अन्न हम खाएंगे उससे हमारे मस्तिष्क बनेगा, उससे हमारा दिमाग बनेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 5 साल की उम्र से ही हमें ये इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा दी। और एक शिक्षा उन्होंने इस घटना से क्या दी कि जब हम कोई व्रत लेते हैं तो कितने दृढ़ता से हमें उसका पालन करना चाहिए। जब बिमला प्रसाद का ये व्रत के बारे में हम सुनते हैं तो किन का स्मरण आता है, ध्रुव महाराज का, जिन्होंने भी इसी प्रकार का दृढ़ निश्चय किया था 5 साल की उम्र में कि मैं वन में जाके भगवान की प्राप्ति करूंगा, तपस्या करूंगा। हालांकि 5 साल के बालक के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है कि वो तपस्या करे, व्रत ले। आपने कई 5 साल के बच्चों को देखा है, क्या आपने देखा है उनमें ये क्षमता कि वह ऐसे जबरदस्त व्रत धारण करते हैं और आजीवन उसका पालन करते हैं? इसका मतलब है कि बिमला प्रसाद जो है ये बहुत ही विशेष बालक थे। अंत तक, अपने अंतिम क्षणों तक उन्होंने आम नहीं खाया। हाँ, एकाध बार आम की चटनी खाया करते थे, लेकिन आम नहीं खाया। और जब भी कोई उनको आम देता था, जब वो वृद्ध अवस्था में थे, तब भी वो हाथ यूं करके कहते थे, नहीं नहीं नहीं, मैं आम नहीं खा सकता, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मैंने भगवान को भोग चढ़ाए बिना मैंने खाया था आम। मतलब 50 साल 60 साल बाद भी वो उन्होंने पहले की घटना याद की कि बाल्यावस्था में मैंने जो गलती की थी उसको इतनी गंभीरता से उन्होंने लिया, कभी भी भूले नहीं। इसलिए कहा जाता है कि अपने गलतियों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और दूसरे को गलतियों को तुरंत भूल जाना चाहिए। अपने जो अच्छे चीजें हैं, जो हमने ठीक ठाक किए हैं, उनको तुरंत भूल जाना चाहिए और दूसरे ने जो अच्छा काम किया है, ठीक ठाक किया है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। कितने महत्वपूर्ण बात है, लेकिन वास्तव में होता क्या है हमारे जीवन में, हम उल्टा करते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं तो शायद हम स्वीकार भी नहीं करते, और स्वीकार करते भी हैं तो बहुत ही जल्दी उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे ने उस कोई गलती की है तो आजीवन भर याद रखते हैं, 20 साल बाद भी उसको याद दिलाएंगे, देखो ऐसे ऐसे तुमने किया था 20 साल पहले जब यहां उस जगह में थे, तो तुमने मुझसे ऐसे ऐसे बोला था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने जीवन से बतला रहे हैं कि अपने से छोटी भी गलती हो तो उसका हमें इतना एहसास होना चाहिए, इतना पश्चाताप होना चाहिए कि आजीवन भर हम उसे नहीं भूलें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल निराश हो जाएं कि अरे अरे हमने कितने गलतियां किए हैं, भक्ति नहीं करेंगे, नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निरुत्साही नहीं हुए, लेकिन हमेशा सतर्क रहे कि यह गलती पुनः कभी ना हो। तो उसी तरह से जब हमारे हाथों से कोई गलती होती भी है तो हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम ये गलती को कभी भूलेंगे नहीं, और आगे चल के हम बहुत सावधान रहेंगे कि ये गलती हमसे दोबारा न हो जाए। तो इस प्रकार से थोड़े समय बाद भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी बदली हो गई, कलकत्ता वो चले गए किसी काम पर, और वहां पे उन्होंने एक नया घर बनवाया जिसका नाम उन्होंने रखा भक्ति भवन। और उस घर को बनाते 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 समय जब जमीन को खोद रहे थे तो अचानक उनको वहां पर कूर्मदेव भगवान की एक मूर्ति मिली। तो उन्होंने समझा कि यह बहुत ही शुभ चीज है, हमारे घर के नीचे भगवान विराजे थे कूर्मदेव के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं कि मंदर पर्वत को उन्होंने देवताओं और असुरों ने एक मंथन के लिए एक डंडी बनाई थी। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो मंदर पर्वत जो है इतना भारी था कि कोई देवी देवता उनको धारण नहीं कर पाए, सभी उसके वजन के नीचे प्राय कुचल गए, कुचला गए। लेकिन फिर भगवान ने आकर कूर्मदेव के रूप में अपने पीठ पर धारण किया, और फिर जब समुद्र का मंथन चल रहा था तो मंदर पर्वत का वजन और उसका घूमना इधर उधर उनको खुजली के बराबर प्रतीत हो रहा था, उनको बड़े आराम लग रहा था ऊपर, जैसे हमारे पीठ को कोई हल्के से खुजली करे हमें कितना आराम लगता है, तो वैसे भगवान कूर्मदेव को लग रहा था। तो कूर्मदेव अगर कहीं हो नीचे तो वो अपने पीठ पर आधारित करें तो ये बहुत शुभ चीज है। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अर्थात विमला प्रसाद को ये मूर्ति दी और कहा कि तुम इसकी पूजा करो, और हर रोज बिना चूके हुए विमला प्रसाद कूर्मदेव भगवान की पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे। इसका मतलब ये है कि माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन से ही भगवान की सेवा में लगाएं, उनको अलग अलग भक्ति के नियम और अंग सिखाएं, जैसे कि किस प्रकार से एक माला हो जाप करना, कैसे कीर्तन में शामिल होना, जब कोई सत्संग होता है तो कैसे आकर चुपचाप बैठना, प्रशिक्षण देना चाहिए बच्चों को इस बारे में। अगर बचपन की अवस्था से हमने ऐसे प्रशिक्षण नहीं दिया तो आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगा। और किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान को श्रृंगार करना है। श्रील प्रभुपाद जी भी अपने बचपन में वो ऐसे ही भगवान की सेवा किया करते थे, उनके पिताजी ने उनको जगन्नाथ जी की छोटी छोटी मूर्तियां दी थी और वो जगन्नाथ जी की सेवा करते रहते थे। और जब वो केवल एक शिशु थे अपने मित्रों के साथ में मोहल्ले में उन्होंने छोटी सी रथ यात्रा निकाली। जगन्नाथ जी का रथ तो बहुत बड़ा है, बेलगाम में जब हमने रथ यात्रा निकाला वो उतना बड़ा रथ नहीं है लेकिन फिर भी काफी बड़ा है, लेकिन शिशु प्रभुपाद अभय चरण ने छोटा सा रथ निकाला था और सारे मोहल्ले के बच्चे आके उसमें शामिल हो रहे थे। हम देखते हैं कि हरेक महाभागवत के साथ में ऐसे ही हुआ, परीक्षित महाराज हो, उद्धव हो, इनके बारे में श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि कैसे वो बचपन में ही भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते थे, छोटी छोटी मूर्तियां उनको दिए गए थे, लकड़ी के हो, कपड़े के हो, और बड़े प्रेम से उनके साथ उनकी सेवा करते थे। तो इस प्रकार से विमला प्रसाद को भी यह सौभाग्य मिला कि वो कूर्मदेव की पूजा करें और हर दिन बिना चूके हुए वो ऐसी सेवा करते रहे। फिर स्कूल में भर्ती हुए जब उनकी उम्र हो गई, और इतने बुद्धिमान थे केवल एक बार कोई चीज श्रवण करने से उनको याद रह जाता था, बहुत जल्दी उन्होंने सारे जो चीजें हैं जो उनके अध्यापक सिखाते थे वो सब सीख गए। सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए और भक्ति विनोद ठाकुर तो बहुत प्रसन्न हुए अपने पुत्र को देखकर। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने बिपिन बिहारी गोस्वामी इनसे दीक्षा ली थी। एक बार बिपिन बिहारी गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर के घर में आए और भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका स्वागत किया, उनको दंडवत प्रणाम किया और उस समय 7 साल के बिमला प्रसाद भी उसी कमरे में उपस्थित थे। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने दंडवत प्रणाम किया विपिन बिहारी गोस्वामी को, तो विपिन बिहारी गोस्वामी ने अपने चरणों को भक्ति विनोद ठाकुर के सर के ऊपर रख दिया आशीर्वाद देने के लिए उस प्रकार से। और थोड़े समय बाद भक्ति विनोद ठाकुर कोई उनकी सेवा करने के लिए बाहर चले गए कमरे के। तो उस समय बालक बिमला प्रसाद ने विपिन बिहारी गोस्वामी से कहा, आप मेरे पिताजी के गुरु हैं ये सही है, लेकिन आपने मेरे पिताजी के सर के ऊपर पांव रखा है, क्या आपको मालूम है कि ये कौन है? तो विपिन बिहारी गोस्वामी को आश्चर्य हुआ कि 7 साल का बालक ऐसे बोले। फिर बिमला प्रसाद आगे बोले, ये नित्य सिद्ध पुरुष है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हालांकि गृहस्थ है, भगवान के धाम से आए हैं, भगवान के पार्षद हैं, ये नित्य सिद्ध है। क्या आपके अंदर वो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, कि आपने आपके चरण उनके सर के ऊपर रखे? विपिन बिहारी गोस्वामी को कोई बोलने के लिए शब्द नहीं रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि इतना बालक, छोटा बालक ऐसे बोलेगा। और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर उस कमरे में फिर से आ गए। तो विपिन बिहारी गोस्वामी ने उनसे कहा कि ये जो तुम्हारा बच्चा है बहुत तेज बोलता है। फिर आगे चल के भक्ति विनोद ठाकुर को पता चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा था। फिर अपने शिष्यों को भी कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सबसे बड़े भाई जो थे उनका नाम था अच्युतानंद। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने सारे बच्चों को ऐसे ही नाम दिए थे, बंटी, पिंकी, मिंटू, पिंटू, ऐसे नाम नहीं दिए। तो बच्चों को जब जन्म होता है, घर में नामकरण संस्कार होता है, तो भगवान के नाम ही उनको देने चाहिए, ऐसे इधर उधर के नाम नहीं देने चाहिए। तो अच्युतानंद एक दिन बहुत बीमार पड़ गए और इतने बीमार पड़ गए कि उनके लिए कोई दवाई नहीं थी। तो उस समय बिमला प्रसाद ने लगातार 6 दिन करताल लेकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया, 24 घंटे सोए नहीं, खाया पिया नहीं कुछ। और 6 दिन के अंत में अच्युतानंद के कपाल के ऊपर वो रामानुज संप्रदाय का तिलक जो होता है उसका रूप प्रकट हो गया। और उस समय अच्युतानंद कहने लगा कि मैं पिछले जन्म में रामानुज संप्रदाय का एक वैष्णव था, लेकिन मैंने एक गौड़ी वैष्णव भक्त के प्रति बहुत अपराध किया था, मैंने बड़ा वैष्णव अपराध किया था, और तुमने इस प्रकार से कीर्तन मेरे पास करके मुझे उस अपराध से मुक्त कर दिया है। और उसके साथ में फिर अच्युतानंद ने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसका मतलब यह है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बहुत बड़े वैष्णव अपराध से अपने बड़े भाई को मुक्त कर दिया। तो बचपन से ही बिमला प्रसाद के ऐसे कई कार्य चलते रहे। फिर स्कूल की पढ़ाई चलती रही। 18 साल की उम्र में बिमला प्रसाद ने कैपिटल संस्कृत कॉलेज, ये कॉलेज में भर्ती वो हो गए और संस्कृत पढ़ना आरंभ किया। वैसे तो पहले से ही संस्कृत जानते थे, लेकिन अभी विश्वविद्यालय में गए और बड़े विद्वान हो गए बहुत ही कम समय में। लेकिन थोड़े समय से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 22 साल की उम्र में वो त्रिपुरा के राजा के दरबार में उन्होंने सेवा स्वीकार की। त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब वैष्णव स्थान थे। नरोत्तम दास ठाकुर उनके शिष्य बने थे, वहां के जो राजा थे, बहुत साल पहले, करीब 200-300 साल पहले की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 300 साल पहले की बात। तो जब राजा वैष्णव बने थे तो उन्होंने अपने सारे राज्य को वैष्णव बना दिया था। जैसे कि राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और सारे राज्य को बौद्ध बना दिया, उसी प्रकार से मणिपुर, त्रिपुरा के राजा जो थे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की नरोत्तम दास ठाकुर से, जो कि महान वैष्णव आचार्य थे गौड़ीय संप्रदाय में, और उन्होंने अपने सारे राज्य को वैष्णव बना दिया। आप में से अगर कोई मणिपुर गए हैं, अब जानते हैं ना मणिपुर कहाँ है, बिल्कुल उत्तर पूर्व दिशा में है, बांग्लादेश से भी पूर्व दिशा में, बहुत सुंदर स्थान है। हाँ, आजकल बहुत राजनीति की दृष्टि से उत्पात चल रहा है, लेकिन इतने सारे महत्वपूर्ण वहां पर वैष्णव तीर्थ स्थान है और उनकी जो संस्कृति है कृष्ण भक्ति के ऊपर आधारित है। वहां पे साधारण लोग सड़क पे चलते चलते तिलक पहन के चलते हैं, यहाँ केवल जो इस्कॉन मंदिर में आते हैं वही तिलक पहनते हैं, और वो भी बाहर जाते कभी कभी थोड़े लोग पोंछ देते हैं। लेकिन वहां पर रास्ते में सभी लोग, साधारण से साधारण लोग तिलक पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, और वहां पे जो मुख्य मंदिर है वो राधा गोविंद मंदिर है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां रोज आते हैं दर्शन करने के लिए, सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, और उनकी जो संस्कृति है नाट्य संगीत इत्यादि सब कृष्ण लीला के ऊपर आधारित है। मणिपुरी नृत्य ये बहुत प्रसिद्ध है, और खास करके रास लीला का नृत्य जो करते हैं मणिपुरी नृत्य, उस वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो किस प्रकार से वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण लीला की ये सब कथाएं लीलाएं मणिपुर में बच्चे बच्चे सुनते हैं। आजकल धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही है, लेकिन वो इनकी संस्कृति है। तो उनके राज पंडित के रूप में बिमला प्रसाद वहां पर गए, 3 साल उनके यहां वो रहे, और बाद में उन्होंने ये सेवा भी छोड़ दी और वापस चले आए। थोड़े समय तक उनको पेंशन मिलता रहा, फिर बाद में उन्होंने पेंशन भी लेना बंद कर दिया। उस दौरान ये हो गया था कि भक्ति विनोद ठाकुर अभी प्राय रिटायर हो रहे थे, और हर रोज नवद्वीप में जब वो रहते थे तो श्रीमद् भागवत का प्रचार करते, श्रीमद् भागवत का प्रवचन हर रोज सुबह को देते। तो उस समय गौर किशोर दास बाबा जी नाम के एक बहुत महान वैष्णव, जो गौड़ी वैष्णव थे, वो वृंदावन से लौटकर नवद्वीप में आए, और वो आकर भक्ति विनोद ठाकुर के प्रवचन रोज सुना करते थे। बड़े शुद्ध वैष्णव थे, और भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको तुरंत पहचाना कि ये तो कोई महान परमहंस वैष्णव है। वैसे एक परम वैष्णव ही दूसरे परम वैष्णव को समझ सकता है, नहीं तो शुद्ध वैष्णव को समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र बिमला प्रसाद से कहा कि तुम इनसे, गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा लेना। उस समय गौर किशोर दास बाबा जी के पास बिमला प्रसाद गए और कहने लगे कि कृपा करके मुझे आप दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने उत्तर दिया कि मैं तो कृपा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास कोई कृपा है नहीं, कृपा तो केवल गौरांग महाप्रभु के पास है। मैं उनको पूछूंगा, जब वो अनुमति देंगे, कृपा देने के लिए तैयार होंगे, तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। फिर अगले दिवस फिर से बिमला प्रसाद उनके पास आए, उन्होंने पूछा आप दीक्षा देंगे, आपने पूछा महाप्रभु से? तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा, अरे मैं तो भूल गया, हालांकि महाप्रभु शारीरिक अवस्था में पृथ्वी को छोड़कर बहुत साल हो गए थे, 400 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी जो महान वैष्णव होते हैं गौर किशोरदास बाबा जी की तरह, अपने अंतःकरण में ही उनका हमेशा टेलीफोन का कनेक्शन रहता है भगवान के साथ। तो इसलिए हर दिन ऐसे होता गया, और वो बोलते कि अरे अरे मैं भूल गया। तो फिर एक दिन बिमला प्रसाद ने कहा कि आप तो उस व्यक्ति के भक्त हो जो सबसे बड़े चोर है, भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय कुछ वो हरण कर लेते हैं, और अभी आप मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे साथ में आप ऐसा चीटिंग कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, आप मुझे दीक्षा दीजिए। वैसे इसके पहले भी बिमला प्रसाद ने गौर किशोर दास बाबा जी की बहुत सेवा की, काफी समय तक गौर किशोर दास बाबा जी इनकार करते रहे कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा। जब वापस लौटकर निराश होकर बिमला प्रसाद अपने पिता के पास गए, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि जब तक तुम उनसे दीक्षा नहीं लोगे तब तक घर नहीं लौटना। परसों भी वही चर्चा हो रही थी कि आजकल परिस्थिति कितनी बदल गई है, आजकल कई माता पिता होते हैं जो बोलते हैं अगर दीक्षा लोगे तो घर में नहीं आना, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या बताया, अगर दीक्षा नहीं ली उनसे तो लौट के नहीं आना। हम चाहते हैं कि तुम अच्छा वैष्णव हो जाओ, वैष्णव नहीं होना है तो चले जाओ यहां से, लेकिन आजकल क्या होता है, वैष्णव होना है तो चले। तो खैर बड़े निराश हो गए बिमला प्रसाद, लेकिन अपने गुरु की सेवा करते रहे। जहां गौर किशोरदास बाबा जी नदी के तट में शौच करने जाते थे, हमेशा उस स्थान को साफ करते रहते। गौर किशोरदास बाबा जी को पता नहीं रहता कि कौन है ये साफ कर रहा है, बाद में उनको पता चल गया और अंत में उन्होंने बिमला प्रसाद को दीक्षा दे दी और उनका नाम हुआ वार्ष भानवी देवी दास। वार्ष भानवी देवी मतलब श्रीमती राधा रानी का एक नाम है, और उनके दास मतलब श्रीमती राधा रानी का दास, ये नाम मिला बिमला प्रसाद को। और इस प्रकार से बिमला प्रसाद बड़े खुश हुए, अपने भक्ति के कार्य जारी रखे। उस समय जैसे कि पहले वर्णन किया, इतने सारे अपसंप्रदाय और गलत जो विचार फैलाए जा रहे थे आध्यात्मिक जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, भक्ति विनोद ठाकुर इस परिस्थिति को देखकर बहुत दुखी होते थे और कई बार भगवान से या ऐसे ही अपने आप निराश होकर कहते थे कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन सारे गलत चीजों का खंडन कर सके बड़े जोरदार तरीके से। फिर उन्होंने अपने पुत्र बिमला प्रसाद से कहा कि तुम जाके इनका खंडन करो। तो कई बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे किया करते हैं। वहां के जो जाति ब्राह्मण थे खास करके बहुत ही विरोध करते थे वैष्णव धर्म का, और जब गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत करते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो ये ब्राह्मण सामने से आकर उनका विरोध करते और कहते कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो तो केवल एक भक्त थे। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अथर्व वेद से चैतन्य उपनिषद इस ग्रंथ से प्रमाण प्रस्तुत करते, जिसमें कितने सारे श्लोकों में वर्णन किया हुआ है कि भगवान का विशेष रूप इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का है। और फिर कभी वो पूछते कि आप इस पंचरात्र का विधि के अनुसार आप गौर गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, ये गौर गायत्री मंत्र क्या है, ये ऐसा कोई गायत्री मंत्र शास्त्र में नहीं दिया है। फिर विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका खंडन करते हैं। और ऐसे चलता गया, साथ साथ में औल बौल सहजिया कर्ता भाज इत्यादि ऐसे सब अपसंप्रदाय थे, 13 प्रमुख अपसंप्रदाय, और ये अलग 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 गलत गलत चीजें प्रचार करते रहते हैं और हरेक का खंडन करते रहते। कई बार जो बाबा जी हुआ करते थे वो भी गलत ढंग से व्यवहार करते और वैष्णव का नाम बड़ा बदनाम हो जाता था। एक बार ऐसे हुआ कि बंगाल के एक गांव में एक बहुत बड़ी सभा होने वाली थी, और उस सभा में जगह जगह के बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान इत्यादि आने वाले थे। और ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मणों का गुणगान, यह विषय होना था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस समय काफी बीमार थे, वहां पर नहीं जा पाए, तो उन्होंने बिमला प्रसाद से वार्ष भानवी देवी दास से कहा कि तुम जाओ और मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए तुम इस बात को सिद्ध कर दिखाओ कि वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। क्योंकि उस जमाने में ये स्मार्त ब्राह्मण और जाति ब्राह्मण ये सोचते थे कि हम सबसे ऊंचे लोग हैं। ज्यादातर ये देखा जाता था कि हालांकि ये लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन इनके जो कार्य थे, इनकी जो आदतें थी, इनके जो गुण थे, वो बिल्कुल नीच ढंग के थे। वो मांस खाते थे, कभी शराब पीते थे, या केवल देवी देवताओं की उपासना में रहते थे, भगवान की भक्ति नहीं करते थे, बड़े घमंडी हुआ करते थे, क्रोध करते थे, इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते थे, तो केवल नाम के ब्राह्मण थे बस। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण क्या है उनको नहीं मालूम था। और वैष्णव क्या चीज है यह भी उनको नहीं मालूम था। इसलिए बहुत खंड वो बहुत निंदा करते थे वैष्णवों की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पर गए, उस समय उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, एक नवयुवक थे उस समय, वहां पर गए और उन्होंने तीनों दिन भाषण दिए वहां पर, तीन दिन की सभा में। पहले दिन तो उन्होंने जो प्रवचन दिया उसमें केवल ब्राह्मणों की प्रशंसा की, शास्त्र में जो जो ब्राह्मणों के स्तुतियां हैं ब्राह्मणों के बारे में वो सुनाए शास्त्रों से। बिमला प्रसाद वास्तव में बहुत बड़े विद्वान थे, सब शास्त्रों को जानते थे, इसलिए अलग अलग शास्त्रों से वो प्रमाण पेश करने लगे कि कैसे ब्राह्मण कितना महान होता है। तो सारे ब्राह्मण बड़े खुश हो गए इस बात को सुनकर। और फिर दूसरे दिन उन्होंने बताया कि वैष्णव कौन होता है, और फिर यह सिद्ध कर दिखाया कि वास्तव में ब्राह्मण कौन होना चाहिए और वैष्णव किस तरह से ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। और एक के बाद एक के बाद एक शास्त्र से श्लोक बोलते गए, श्लोक बोलते गए, प्रमाण प्रस्तुत करते रहे, और इतना प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया और इतने जोरदार उन्होंने प्रवचन दिए वहां पर कि किसी के पास वहां पर कोई उत्तर नहीं रहा। और वहां के जो लोग थे इतने प्रसन्न हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रवचनों से कि सारे ब्राह्मणों को एक ओर रख के उन्होंने केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सत्कार किया, उनके चरण धोए और चरण धोकर जो जल था वो सबके ऊपर छिड़कने लगे, उनकी बहुत स्तुति होने लगी वहां पर। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वैष्णव सबसे ऊंचा पद होता है। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ग होते हैं। जो व्यक्ति सत्व गुण में होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, जो व्यक्ति रजोगुण में होता है उसको क्षत्रिय कहते हैं, जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण में होता है उसको वैश्य कहते हैं, और जो तमोगुण में होता है उसको शूद्र कहते हैं। तो ये जो चार वर्ण हैं इनको ये वर्णाश्रम धर्म में आते हैं, लेकिन इस वर्णाश्रम धर्म से भी नीचे गिरे हुए लोग हैं, जैसे म्लेच्छ, यवन, चांडाल इत्यादि। म्लेच्छ, यवन इत्यादि मतलब जो शास्त्रों के आदेश के बिना कोई मांस खाते हैं, गंदे काम करते हैं, और चांडाल वो हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं। तो ये शूद्र से भी नीचे हैं, वर्णाश्रम धर्म के भी नीचे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से और ऐसे लोग हैं जो वर्णाश्रम धर्म के परे भी हैं, वर्णाश्रम धर्म के ऊंचा हैं, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ उनका पद है, और वो है वैष्णव। क्यों ऐसा? क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वो आध्यात्मिक स्तर में स्थित हो जाता है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते त्रिगुणान समिति इत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान गीता के 14वें अध्याय में बताते हैं बिना पतन हुए जो मेरी निष्ठा से मेरी भक्ति सेवा करता है वह ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित है, मतलब आध्यात्मिक स्तर में वो स्थित है। और क्योंकि वैष्णव हमेशा कृष्ण की सेवा में लगा रहता है वो इस भौतिक गुणों के परे होता है, सत्व गुण के भी परे होता है, इसलिए वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कहलाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई श्लोक बताए, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो चांडाल परिवार में जिसने जन्म लिया है अगर वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है तो वो अपने सारे परिवार को मुक्त कर सकता है, उसका उद्धार कर सकता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है लेकिन उसके अंदर 12 ब्राह्मण के गुण होने के बावजूद तो भगवान का भक्त नहीं है तो वो खुद का भी उद्धार नहीं कर सकता, तो ब्राह्मण का उद्धार क्या, अपने परिवार का उद्धार क्या करेगा। ठीक उसी प्रकार से गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्राह्मण कौन होता है। ब्राह्मण वो होता है जो गुण से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो वर्णों का विभाजन मैंने किया है अर्जुन, ये गुण और कर्म के हिसाब से किया है, न कि जन्म के हिसाब से। इसलिए अगर किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मण हो गया। अगर उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो तो वो ब्राह्मण कहलाता है, अन्यथा नहीं। और अगर किसी शूद्र के घर में भी किसी बच्चे का जन्म हो, ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि ये 9 गुण होने चाहिए ब्राह्मण के। जिस व्यक्ति के पास ये 9 गुण हैं, वही ब्राह्मण कहलाता है। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत कुछ कहा और सिद्ध कर दिखाया कि वैष्णव ही सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। इसलिए वैष्णव को कभी जाति के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये भक्त ये जाति का है, वो भक्त वो जाति का है। नहीं, वैष्णवों के बीच में कोई जाति नहीं। जाति धर्म, अगर वैष्णवों को हम जाति के दृष्टि से देखेंगे तो ये नारकीय बुद्धि कहलाता है शास्त्रों के आधार पर। क्योंकि वैष्णव एक हरि का जन होता है, हरिजन। आजकल जो हरिजन का मतलब वो अलग हो गया है, लेकिन हरिजन मतलब क्या? हरि का जन, हरि का भक्त। ये बहुत ऊंचा पद है ये। तो जो भी लोग भगवान के भक्त होते हैं, हरि जन होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति का, देश का। ये अमेरिकन भक्त है, भारतीय भक्त है। कई बार लोग निंदा करते हैं कि आपके संस्था में कितने सारे विदेशी भक्त होते हैं और उनको आप लोग ब्राह्मण बनाते हैं। लेकिन अगर विदेशी हो, भारतीय हो, कोई भी हो, अगर वो वैष्णव बना है, भगवान श्री हरि का भक्त बना है, तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात सिद्ध कर दिखाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 7 साल तक बहुत तपस्या की, बाबा जी का वेश धारण किया और नवद्वीप पर रहकर वो दिन भर 20-22 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे, जैसे हरिदास ठाकुर किया करते थे। लगातार 7 दिन 7 साल रोके नहीं। अपने आगे जो आंदोलन उनको करना था, उसके लिए वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर रहे थे। देखिए, अगर हमें समाज में कुछ करना है, दुनिया में जीवन में कुछ करना है, उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और आध्यात्मिक शक्ति से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें हरिनाम लेना चाहिए। तो हम सब भक्तों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भक्त होता है, भक्ति में आकर इतना खुश हो जाता है कि वो चाहता है कि ये खुशी दूसरे को भी मिले, इसलिए वो प्रचार करना चाहता है दूसरों को। लेकिन कभी कभी प्रचार करते करते इतना व्यस्त हो जाता है कि खुद भी जाप नहीं करता है, खुद भी कीर्तन नहीं करता है, खुद भी प्रवचन सुनने नहीं आता है, खुद किताबों को पढ़ता नहीं है। तो आध्यात्मिक शक्ति कहां पर आएगी? प्रचार करने के लिए, दूसरों को हृदय परिवर्तित करने के लिए। इसलिए खुद हमें अच्छी तरह से हरिनाम स्वीकार करना चाहिए, खुद सत्संग में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, फिर हम आगे जाके प्रचार कर सकते हैं, दूसरों को भक्ति का संदेश पहुंचा सकते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने इस बाबा जी की अवस्था में थे, तो इनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर के एक शिष्य वहां पर उनको ढूंढते हुए आए, क्योंकि वो ये व्यक्ति चाहते थे कि कलकत्ता में चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन शुरू हो और वहां पर जोरदार प्रचार शुरू हो। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम सुना था, क्योंकि ये बिमला प्रसाद इतने बड़े विद्वान थे और खास करके ये बड़ी सभा हुई ब्राह्मणों की, उसके बाद में उनको ये नाम दिया गया भक्ति सिद्धांत, जिन्होंने भक्ति के सिद्धांत को बड़े अच्छी तरह से स्थापित किया है। सरस्वती, जिनको सरस्वती देवी का आशीर्वाद मिला है। तो जब उन्होंने गांव के निवासियों को पूछा कि ऐसे ऐसे दिखने वाले एक साधु यहां पर पास में कहीं है क्या, तो गांव वालों ने जवाब दिया, जैसे आप वर्णन कर रहे हैं वैसे एक व्यक्ति तो है जो नदी के पास में रहता है, लेकिन साधु तो नहीं, वो तो पागल आदमी है। क्योंकि ये लोग समझ नहीं सकते थे कि जो लक्षण भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रकट कर रहे थे वो भक्ति के सबसे ऊंचे स्तर के थे। तो ये व्यक्ति वहां पर आए और उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति इधर भागे जा रहा है, उधर भागे जा रहा है, कृष्ण कृष्ण निताय गौर हरि बोल ऐसे बोल के चिल्लाते, कभी कूदते, कभी कपड़े पहनकर ही नदी में कूद पड़ते, और अपने बिल्कुल भाव विभोर अवस्था में वो हमेशा कीर्तन करते, जाप करते। और ये व्यक्ति आए, वो समझ गए कि ये बहुत बड़े भक्त हैं और यही भक्ति सिद्धांत हैं, बिमला प्रसाद हैं। तो उनके सामने आके अपना परिचय दिया और कहने लगे कि आप कलकत्ता आइए और वहां पर हम महाप्रभु के आंदोलन की शुरुआत करेंगे, प्रचार करेंगे, वहां संकीर्तन करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने भाव में थे तो उन्होंने जवाब दिया, संकीर्तन? अरे संकीर्तन तो यहां चल रहा है, देखो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पंच तत्व, सभी लोग संकीर्तन कर रहे हैं, देखते नहीं हो? देखो देखो यहां सब नवद्वीप में यही चल रहा है। और फिर निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल कह के इधर उधर फिर से कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। तो इनको देखकर फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अभी कोई यहां रहकर नहीं होगा, हम संकीर्तन आंदोलन शुरू करना भी इस समय के लिए तो कम से कम छोड़ देंगे उस विचार को। फिर वो लौट कर चले गए। लेकिन कई साल बाद में यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने जब संन्यास लिया, इसी व्यक्ति के दरवाजे के खटखटाकर वहां पे खड़े हुए कि अभी मुझे संस्था बनानी है चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने के लिए, अभी आप ट्रस्ट की रजिस्ट्री कर लीजिए, आज के आज करा दीजिए। फिर उन्होंने गौड़ी मठ की स्थापना की। तो खैर ऐसे 7 साल पूरे पूरे हो गए और उस समय गौर किशोरदास बाबा जी, उनका देहांत हो गया। उनके तिरुभाव के समय वहां के कई जो बाबा जी थे वो वहां पर आए अंतिम संस्कार करने के लिए। गौर किशोरदास बाबा जी इतने महान परमहंस वैष्णव थे कि अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते थे। ये वैष्णव के लक्षण होते हैं। सच्चा वैष्णव वो होता है जो अपने आप को तुच्छ समझता है और हर एक दूसरे व्यक्ति को और खास करके वैष्णव को पूजनीय समझता है। तो गौर किशोरदास बाबा जी अपने आप को इतना नीच समझते थे कि कभी कभी ऐसे नम्रता की अवस्था में वो कहते कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा शरीर जो है इतना पतित है, इतना पापी है कि मुझे रस्सी से बांधकर नवद्वीप के सड़कों पर खींचते ले जाना और फिर मेरे शरीर को पशुओं को खिला देना। तो जब बाबा जी लोग सब वहां के आए, गौर किशोरदास बाबा जी के साथ ऐसा ही करने वाले थे, तो वहां पर ठीक उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सुना ये सब हो रहा है, आए वहां पर, तुरंत उन बाबा जी से झगड़ा करने लगे। अरे आप में कोई बुद्धि है कि नहीं? इन्होंने कहा, अपनी नम्रता से कहा ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वास्तव में ऐसे करें कि उनके शरीर को खींच के ले जाएंगे, आपको इतनी भी समझ नहीं है? तो बहुत डांटने लगे उनको। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या अधिकार है ये सब बोलने के लिए, तो हम सब बाबा जी हैं। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा, मैं इनका शिष्य हूं, हम दो जन हैं, बंसीदास बाबा जी और हम जो कि शिष्य हैं हमारे गुरु महाराज के, इसलिए हमें पूरा अधिकार है। काफी वाद विवाद होता गया। फिर अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप सब जो भी बाबा जी हैं, आप अंतिम संस्कार करना चाहते हैं गौर किशोरदास बाबा जी का, तो आप में से वो बाबा जी ये संस्कार करने के लिए योग्य होगा जिसने पिछले एक साल में कोई अनैतिक कार्य नहीं किया है, किसी ने कोई परस्त्री संग नहीं किया है। हाथ उठाइए। किसी ने हाथ नहीं उठाया। पहले उन्होंने कहा पिछले एक दिवस में, एक सप्ताह में, एक महीने में, फिर भी जब किसी ने हाथ नहीं उठाया, उन्होंने कहा एक साल में। ऐसे जब किसी ने भी हाथ नहीं उठाया तो सब चुप रह गए। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जैसे योग्य था वैसे अंतिम संस्कार किए गौर किशोरदास बाबा जी के। जो महान परमहंस वैष्णव होते हैं उनके शरीर को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, क्योंकि उनका शरीर पहले से ही शुद्ध हो चुका होता है। हमारे वैदिक संस्कृति में शरीर को जलाते क्यों हैं? क्योंकि शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। शरीर का आत्मा और सूक्ष्म देह से संबंध जो है वो पूरी तरह से कट जाता है, और ये स्वच्छता के नियम के आधार पर भी है। तो महान वैष्णव जो होते हैं उनका जो संग संबंध अपने शरीर से है वो पहले से टूट चुका होता है, वो बिल्कुल निरासक्त रहते हैं, इसलिए उनका शरीर जो है दफनाया जाता है, समाधि दी जाती है उनको। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत जोर से प्रचार करना आरंभ किया। 1918 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और केवल इसलिए कि वो प्रचार कर सके। कई ऐसे बाबा जी थे जो उनको बाबा जी दीक्षा देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जाना था कि ये तो बड़े अच्छे विद्वान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, और अगर हमारे शिष्य बन जाएं तो हमारा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस सब को जानते थे। उन्होंने जो वहां के बाबा जी थे जो हर तरह के गलत कार्य करते थे उनका भी खंडन किया, और सिद्ध कर दिखाया कि असली वैष्णव कौन होता है। फिर संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो कलकत्ता में आए। कलकत्ता में उसी व्यक्ति के घर में आए जो उनको खोजते हुए 7 साल पहले आए थे, और उन्होंने उनको कहा कि मैं एक संस्था की स्थापना करना चाहता हूं जिसमें हम महाप्रभु के संदेश का प्रचार करेंगे, और इस संस्था का नाम होगा श्री गौड़ीय मठ। और उसी दिन सारे ट्रस्ट का जो रजिस्ट्री है वो हो गया एक ही दिन में। आजकल ऐसे कुछ करना पड़ता है कितने महीने लग जाते हैं, लेकिन उसी दिन ये सारा कार्य हो गया। और एक उल्टा डंगा जंक्शन इस स्थान पर उन्होंने अपना पहला कार्यक्रम आयोजित किया, वहां पे वो रहने लगे, उनका आश्रम बनाया, और आगे चल के फिर कई जगह उन्होंने बड़े बड़े मंदिर की स्थापना की। और ये एक उल्टा डंगा जंक्शन वही जगह है, उसी बिल्डिंग के छत पर बैठे हुए जब वो प्रचार कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, अपने शिष्यों के संग में बैठे थे, उस समय पहली बार श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिनका नाम उस समय अभयचरण डे था, उन्होंने दर्शन किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। अभयचरण के मित्र थे जिनका नाम था नरेंद्र मल्लिक, और उन्होंने कहा कि आओ, एक बहुत अच्छे साधु आए हैं कलकत्ता में, बहुत अच्छे ढंग से प्रचार करते हैं, बड़े विद्वान हैं, शिक्षित हैं। तो अभयचरण ने जवाब दिया था कि अरे, हमने तो बहुत देखा है साधुओं को, हमारे पिताजी छोटे बच्चे हैं, हमारे पिताजी बुलाते आए हैं, इतने सारे बाबा जी महाराज जी वो आते हैं, हमने इनको सब देखा है कि कैसे लोग होते हैं। तो नरेंद्र मल्लिक ने कहा नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है, आप आके तो देखो। तो प्राय उनको खींच कर ले गए, चलो चलो चलो। तो अपने मित्र को खुश करने के लिए अभयचरण वहां पर गए, और जैसे ही वहां पर पहुंचे और जब परिचय किया नरेंद्र ने अभयचरण का भक्ति सिद्धांत सरस्वती से, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पहले ही देखते हुए उनको सारे जीवन का एक आदेश दे दिया, मिशन दे दिया कि तुम तो बड़े सुशिक्षित नवयुवक हो, कॉलेज से पढ़े हुए हो, अंग्रेजी भाषा जानते हो, तो तुम चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन क्यों नहीं करते हो? ये जो संदेश है तुम पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो। पहली मुलाकात में ही न जान न पहचान, लेकिन जीवन भर का आदेश दे दिया। और उस समय अभय चरण को थोड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं और अभी ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, तो स्वतंत्र अवस्था की प्राप्ति के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक अवस्था हमेशा बदलती रहती है, यह मत समझो कि ब्रिटिश को दूर भगाने से तुम मुक्त हो जाओगे, यह सच्ची मुक्ति नहीं है। अपने मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, तीन गुणों से मुक्त होना, यही सच्ची मुक्ति है। इसलिए राजनीतिक अवस्था बदलती रहेगी, लेकिन ये जो कार्य है ये सारे समाज के लिए, उनके उद्धार के लिए अनिवार्य है, इमरजेंसी है, ये अभी का अभी ये करना चाहिए। ये कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए हम रोक नहीं सकते, इसलिए समय नहीं बर्बाद करो, तुरंत इस कार्य में लग जाओ। लेकिन अभय चरण को थोड़ा समय लगा, भगवान की इच्छा थी, उनको आगे चल के उनके लिए समय भगवान ने रखा था। तो खैर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वो दृष्टि थी कि आगे चल के जब तक पाश्चात्य देश के लोग भक्त नहीं बनेंगे, ये हम भारतवर्ष के लोग भक्त नहीं बनेंगे, कि उनको मालूम था कि अंग्रेज राज की वजह से यहां के लोग ऐसे बन गए हैं कि अपने ही संस्कृति को भूल रहे हैं, पश्चिम देश की संस्कृति को महान मानकर उनको स्वीकार करते जा रहे हैं। और अगर पश्चिम देश के लोग इस संस्कृति को स्वीकार करें, भागवत धर्म को ग्रहण करें, तो फिर यहां के लोग बोलेंगे हाँ हाँ ये अच्छी बात है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो प्रचार आंदोलन शुरू किया वो केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश के अनुसार किया। उनकी दृष्टि थी कि हर जगह ऐसे हर देश में प्रचार हो, और भक्ति सिद्धांत को प्रेरणा मिली थी अपने पिता से भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने कि कहा था कब वो दिन आएगा जब नवद्वीप में रशिया, चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के भक्त आकर जय सचिनंदन गौर हरि ऐसे कीर्तन करेंगे। कब वो दिन आएगा जब अलग अलग देशों के लोग मिलकर सड़कों में घूमते घूमते कीर्तन करते जाएंगे। कब वो दिन आएगा जब हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, जज है, वो तिलक पहनकर कंठी माला धारण करके बैठेगा न्याय देने के लिए। तो इसी दृष्टि को भक्ति विनोद ठाकुर ने कहां से प्राप्त किया? चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, पृथ्वी में जितने सारे नगर आदि ग्राम हैं उनमें मेरे पवित्र नाम गूंजेंगे, ये भविष्यवाणी की थी चैतन्य महाप्रभु ने। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी जो कि इस भविष्यवाणी को साकार कर सके। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इन्होंने इस इच्छा को वास्तव में सिद्ध कर दिखाया। स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 मठ स्थापित किए, गौड़ीय मठ, केवल थोड़े वर्षों में 64 मंदिर बनाए सारे भारत वर्ष में। और उन्होंने मायावाद दर्शन का खंडन किया, बाबा जी अपसंप्रदाय, ये लोग जो फैला रहे थे, जो गलत धारणाएं जो पेश कर रहे थे, उनका खंडन किया। और उन्होंने दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, जिसमें चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, लेकिन सभी को भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनके आदेश के अनुसार काम करना चाहिए। जो आजकल जो वर्णाश्रम धर्म है वो आसुरी वर्णाश्रम है। आसुरी वर्णाश्रम मतलब जन्म के आधार पर वर्णाश्रम, किसका जन्म शूद्र परिवार में हुआ तो वो शूद्र है, किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ वो ब्राह्मण है, ये आसुरी वर्णाश्रम है। लेकिन दैवी वर्णाश्रम क्या है? अपने गुण और अपने कर्म के हिसाब से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जोरदार ऐसे प्रचार करना आरंभ किया। उन्होंने कई पश्चिम देश के व्यक्तियों को भी दीक्षा दी, कई ऐसे लोगों को संन्यास दिया, ब्राह्मण दीक्षा दी, जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था। हाहाकार मच गया ब्राह्मण समाज में, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पीछे नहीं हटे, बड़े शूरवीरता से इन सब का सामना करते रहे और जोरदार प्रचार करते रहे। वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करते रहे। फिर जब अंत में वो जगन्नाथपुरी में थे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रचार उन्होंने छोड़ा नहीं। और जब अपने मंदिर में भी रहते थे तो अपने ही उदाहरण से सिखाते थे भक्तों को कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे कृष्ण के वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए प्रचार के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता में गिने चुने लोगों में से थे जिनके पास एक बड़ी मोटर गाड़ी थी और वो आराम से बैठकर बड़े मोटर गाड़ी में जाते थे। और उस समय तक जो सन्यासी वगैरह थे उनको जूते पहनना मना था, किसी घोड़े पे बैठना मना था, समुद्र पार करना मना था, ये सब विधि विधानें थी उन समय सन्यासियों के लिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत ने क्या किया, वो चप्पल बूट तो छोड़िए, वो तो बड़े गाड़ी में मोटर गाड़ी में बैठकर चलते थे। कई लोगों ने निंदा की उनकी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। अगर भगवान की सेवा के लिए, प्रचार के लिए अगर ऐसे बड़ी गाड़ी को स्वीकार करना पड़े तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी इंद्र तृप्ति के लिए छोटी भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर ये बात उन्होंने प्रभुपाद जी को सिखाई नहीं होती और प्रभुपाद जी केवल यहां पे वृंदावन में रहे होते तो क्या ये हम यहां पर आज उपस्थित होते? तो क्या देश देश में आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर स्थापित होते? दुनिया के कोने कोने में क्या हरे कृष्ण महामंत्र गूंजता? करोड़ों करोड़ों की संख्या में भगवद गीता और श्रीमद भागवत के ग्रंथों का वितरण होता? नहीं, क्योंकि प्रभुपाद हवाई जहाज पर बैठे, पानी में तैरते हुए जहाज के ऊपर बैठे, देशारे विश्व भर का भ्रमण किया, कभी बड़े बड़े महलों में रहे, कभी झाड़ के नीचे रहे, लेकिन हर अवस्था में निरासक्त रहे, क्योंकि वो जानते थे कि जो भी कुछ है वो भगवान की संपत्ति है और भगवान की सेवा में ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हम महल में रहते हैं तो हमें निरासक्त अवस्था में रहना चाहिए, झाड़ के नीचे रहते हैं निरासक्त अवस्था में रहना चाहिए। जो भी भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है वो हमें करना चाहिए। अगर कोई झाड़ के नीचे रहकर झाड़ से आसक्त हो जाए और उसे घमंड हो जाए कि देखो मैं झाड़ के नीचे रहता हूं, मैं कितना तपस्वी हूं, कितना वैरागी हूं, तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई महल में रहकर बड़े नम्रता से ये जानता है कि ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है और उनकी संपत्ति उन्हीं की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी सेवा के लिए अनुकूल है इसलिए मैं यहां रह रहा हूं, तो फिर वो श्रेष्ठ है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे प्रचार करते थे। आज तक ऐसे प्रचारक दिखाई नहीं पड़े थे भारतवर्ष में जो इतने जोरदार प्रचार करते थे और निंदा का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बार ऐसे हुआ जब वो कोई ग्रंथ लिख रहे थे तो एक बंदर आया और बंदर ने टोकरी में से जो थोड़े केले थे वो केले उठाए, दो केले। तुरंत भक्ति सिद्धांत उठे छड़ी लेकर और बंदर का पीछा करने लगे, लेकिन उठते समय जो शय की जो शीशी थी वो गिर पड़ी उनके किताब के ऊपर। और उसी सुबह उन्होंने एक जोरदार प्रवचन दिया था वैराग्य के ऊपर कि किस तरह से हमें संसार से निरासक्त होना चाहिए, अपने कपड़ों से, अपने घर से, अपने परिवार से, धन संपत्ति से। तो ये दृश्य जब एक शिष्य ने देखा तो उन्होंने पूछा कि आज सुबह ही आपने इतना जोरदार प्रवचन दिया वैराग्य के ऊपर, तो आप फिर ये दो केले के पीछे क्यों आप गए? अगर बंदर तो केले ले जा रहा है तो इसमें क्या बात थी? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, ये केले मेरे केले नहीं है, ये श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए रखे गए थे, ये बंदर चोरी करके ले जा रहा था इसलिए मैंने किया। तो भगवान की संपत्ति के लिए हमें ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमें देखना चाहिए कि अपना हर एक पैसा बहुत ही सावधानी से हमें इस्तेमाल करना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए, और खास करके मंदिर का पैसा भी हमें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, कहीं इधर उधर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और अपना पैसा आप सब जो कमा कर रखते हैं वो आपका पैसा नहीं, वो भी कृष्ण का पैसा है, इसलिए उसको भी बहुत सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए और कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जीवनी से बहुत कुछ सिखाया। उनके बाग बाजार के मठ में एक रसोई करने वाले भक्त थे, बहुत ऐसे भक्त थे, ऐसे भक्त थे जो हर एक दूसरे भक्त के साथ झगड़ते थे। ऐसा कोई भक्त नहीं था जिनके साथ इस व्यक्ति ने झगड़ा नहीं किया था। सभी लोग हैरान थे इसके साथ। और अंत में क्या हुआ कि इस भक्त का देहांत हो गया एक दिन। और फिर एक दिन भक्त लोग आपस में बात कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि चलो जान छूटी, ये जो है हमारे साथ ऐसे ऐसे झगड़ा कर रहा था उस दिन। दूसरे भक्त ने बोला, अरे वो मेरे साथ ऐसे ऐसे झगड़ा कर रहा था, उसने मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे बोला था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा हाँ, और वो कितने साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, कितने साफ अपने आप को रखते थे, उसके कपड़े भी कितने स्वच्छ होते थे। तो सारे भक्त चुप रह गए। उन्होंने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने सारे उस व्यक्ति में दुर्गुण होते हुए उनके अच्छे गुण देख रहे हैं। तो उस दिन के बाद उन्होंने उस भक्त के बारे में बात करना सारे भक्तों ने बंद किया, किसी ने निंदा नहीं की। भक्ति सिद्धांत ठाकुर इस बात के बहुत खिलाफ थे कि कोई दूसरे भक्तों की निंदा करें। उन्होंने हमेशा बतलाया कि भक्तों के अच्छे गुण हमें देखने चाहिए, और कोई भी भक्त जब दूसरे भक्त के दुर्गुण देखता था और शिकायत लेके भक्ति सिद्धांत के पास आता था तो वो हमेशा कहते कि देखो मैं तो दोषों का सागर हूं, मैं दूसरों के अंदर दोष कैसे ढूंढ सकता हूं, हमें दूसरे में दोष कभी नहीं ढूंढने चाहिए। एक बार एक भक्त को शिकायत लेकर आए कि ये भक्त ऐसे ऐसे कर रहा है, हमारे दोनों के बीच में पटती नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों भक्तों को बुलाया और कहा आमने सामने बैठो, और एक भक्त को कहा कि दूसरे भक्त के कोई अच्छे गुण है कि नहीं, कि सारे दुर्गुण है। मेरे होंगे अच्छे गुण, थोड़े बहुत होंगे। अच्छा तो बोलते जाओ एक के बाद एक, जो इसके अंदर अच्छे गुण हैं वो बोलो। तो जो पहला भक्त है सोचने लगा, एक दोहा 16 माला जाप करता है, 64 माला जाप करता है रोज। अच्छा आगे बोलो, ये बहुत अच्छी तरह से कीर्तन करता है। हाँ तीसरा बोलो, शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है। और बोलो, एक 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 करके आधा घंटा पूरा उसको लगाया उस भक्त का गुणगान करने में। और फिर कहने लगे, अभी उसके दुर्गुण नजर आते हैं आपको? बोले नहीं। फिर दूसरे भक्त को कहा कि आप इसके अच्छे गुण क्या है वो बताते जाओ। तो ये दूसरा भक्त बोलने लगा पहले भक्त के बारे में, इसके गुण ऐसे ऐसे, एक दो तीन चार। काफी लंबे समय तक भक्ति सिद्धांत उनको खींचते गए कि और बोलो और बोलो। इस प्रकार से दोनों भक्त आपस में फिर से प्रेम का संबंध स्थापित कर सके, और उन्होंने जान लिया कि वास्तव में भक्तों के बीच में एक दूसरे के दुर्गुण नहीं देखने चाहिए, एक दूसरे के दोष नहीं ढूंढने चाहिए, केवल एक दूसरे के जो अच्छे गुण हैं वो हमें ढूंढने चाहिए। इस प्रकार से हम बड़े प्रेम से आनंद से साथ में रहकर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैला सकते हैं। जगन्नाथपुरी में जब वो बहुत बीमार पड़ गए उनके अंतिम दिवसों में, फिर उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया है, मुझे जाने का समय आ गया है। वो जगन्नाथपुरी में रहकर अपने प्राण को त्याग सकते थे जगन्नाथ जी के पवित्र धाम में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे रणभूमि में जाना है, युद्ध भूमि में जाकर मुझे प्राण त्यागना है। युद्ध भूमि मतलब कौन सी? कारगिल नहीं, कलकत्ता। क्यों कलकत्ता? क्योंकि वो उनकी प्रचार की भूमि थी, वहां वो प्रचार करते थे, माया के साथ युद्ध करते थे। उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जा सकता हूं प्राण त्यागने के लिए, पुरी में रह सकता हूं, नवद्वीप में जा सकता हूं, मायापुर में जा सकता हूं, लेकिन मुझे कलकत्ता में प्राण त्याग करना है क्योंकि ये मेरी प्रचार भूमि है, यहां पे मैं प्रचार करते करते प्राण त्यागूंगा। और ठीक वैसे ही हुआ। इससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें यह दिखलाया कि कैसे अपने प्राण हमें बिल्कुल भगवान नाम के प्रचार में हमें लगाना चाहिए, चाहे हम गृहस्थ हो, हम सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो। अगर हम इस आंदोलन में प्रचार हेतु हमारी सारी शक्ति लगाएं, तो चैतन्य महाप्रभु की और सारे हमारे आचार्यों की कृपा अवश्य हमें प्राप्त होगी। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण कमलों में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी तरह निष्ठा एक बूंद भी हमारे हृदय में आ जाए भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग में। वो जो उनके अंदर दृढ़ इच्छा थी प्रचार करने के लिए, हमारे ऊपर भी वो कृपा करें कि महाप्रभु के आंदोलन को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हमें भी वो शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से हम ये भगवत भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से प्रगति कर पाएंगे, मृत्यु के अंत में हम भगवान के धाम को लौट के जा सकेंगे और समाज में हजारों हजारों लोगों को साथ में भगवान के धाम ले जा पाएंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव महोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो अभी हम कीर्तन करेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सम्मान में। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।